अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी के साथ में मैं नदा समीर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आसमान पर खूबसूरती से सजे सितारे हम में से किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या इससे बढ़कर भी इनकी कोई हकीकत है? क्या ये हमारी तकदीर बनाने और बिगाड़ने का अख्तियार भी रखते हैं? इल्म नजूम की क्या हकीकत है? यही हमारा आज का मौजू है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। और इस पर हमारी मालूमात में इजाफा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब, खैरियत से
वालेकुम
आप?
सलाम, अल्लाह का शुक्र।
और गामदी साहब के साथ सिर्फ मैं ही सवाल जवाब नहीं करूंगी, बहुत सारे सवाल लेकर हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल मलाडवाला साहब भी। कैसे इकबाल साहब?
अल्हम्दुलिल्लाह जी।
पहला सवाल कर लूं मैं गामदी साहब से?
प्लीज
गामदी साहब, बता
बिस्मिल्लाह।
सकते हैं आप कि क्या सितारे वाकई हमारी तकदीर पर असरअंदाज हो सकते हैं? इल्म नजूम की हकीकत क्या है?
इसका जवाब तो अल्लामा इकबाल ने दे दिया था, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराखी अफलाक में है खारो जगू, वो तो खुद आसमानों की फराखी में खार फिर रहा है, गर्दश कर रहा है, यहाँ से तुलू होता है वहाँ जाता है, वहाँ से तुलू होता है वहाँ जाता है, उसको मेरी तकदीर की क्या खबर देनी है। देखिए, बात यह है कि इंसान के ऊपर दो दौर गुजरे हैं। एक वो दौर है कि जिसमें इंसान चीज़ों के बारे में तजस्सुस करता था, तो वो लाजमन ये महसूस करता था कि जैसे ये जो कायनात उसके गिर्दो पेश में है, ये जगह जगह से उसकी किस्मत बना रही है, बिगाड़ रही है, यही उसको वजूद में लाती है, यही उसकी परवरिश करती है, इसी से उस पर आफात नाजिल होती हैं। कभी उसको आफ्ताब नज़र आता था, कभी उसको चांद नज़र आता था। चुनांचे आप कदीम मैथोलॉजी में देखें तो ये सब के सब बड़े बड़े सैारे, जिनको अब हम जानते हैं कि वो क्या है, ये इंसान के माबूद बन गए थे, इनको पूजा गया। मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का आप मुताला करें तो उनमें चांद देवता है, उनमें सूरज देवता है, फिर देवियाँ हैं, उनके नाम रखे गए हैं, कहीं अस्तारात है, कहीं बाल है, उनके नामों पर शहर आबाद हुए हैं। तो दुनिया में एक बहुत पुराना दौर ऐसा गुजरा है जिसमें इंसान इन चीज़ों के पीछे कुछ हकीकतें तलाश करता था। आहिस्ता आहिस्ता ये इंकशाफ होना शुरू हुआ कि ये कुछ भी नहीं है, वही मिट्टी है जिस पर हम यहाँ बैठे हुए हैं, वही ऊपर है। कौन जानता था कि लोग चाँद पर जाएँगे और वहाँ से इसी तरह की मिट्टी उठा लाएँगे? ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, अगर आप देखें तो वह इन सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ है, सबसे ज़्यादा शादाब है, उस पर ज़िंदगी है, उस पर हरारत है, उसमें इंसान पैदा हो रहे हैं, उसमें तरह तरह की मखलूकात हैं। अब तो हम जानते हैं कि सब डंडार पड़े हुए हैं, यानी आसमान की पहनाइयों में। कुरान मजीद हमको एक और चीज़ की खबर देता है, वो ये कहता है कि ये पूरी कायनात है, ये इस वक्त तुम्हें जो नज़र आ रही है, ये इसकी असल तकदीर नहीं है। ये कायनात हमने बनाई है अबदी दुनिया बनाने के लिए, और उसका मलबा बखेर दिया। यानी हम एक बहुत बड़ी दुनिया बनाना चाहते थे। देखिए ना, बात यह है कि एक किसान बाज़ वक़्त फसल बोना चाहता है तो वो पहले क्या करता है? पहले यह करता है कि छोटे से इलाके में पनीरी लगा देता है, फिर उसके बाद उसको उखाड़ता है और उखाड़ कर अपने पूरे खेत में फैला देता है। यानी वो पनीरी जो बाज़ वक़्त एक मरला ज़मीन में होती है, जब उसको फैलाया जाता है तो मालूम होता है कि उसने एकड़ों ज़मीन का अहाता कर लिया है। तो अल्लाह ताला ने यह फ़ैसला किया कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जो हमेशा रहेगी, उसमें इंसानों को आबाद करेंगे, उसमें जन्नत भी होगी, उसमें दोजख भी होगी। वो दुनिया कहाँ से वजूद में आएगी? तो कुरान हमें ये बताता है कि ये जो तुम्हारे ऊपर बिखरी हुई दुनिया है, हम इस सारी दुनिया को जमा करेंगे और जमा करके एक नई दुनिया बना देंगे। तो यूँ समझ लीजिए कि वो मैटर या वो मादा जो उस दुनिया के लिए चाहिए, वो भी मौजूद है सारा का सारा। हम अब जानते हैं ना कि बिग बैंग के बाद ये सब कुछ मुंतशर हो गया है, तो ये एक मरतबा फिर इसी तरीके से जमा कर लिया जाएगा। और जमा करके आप अंदाज़ा करें ना कितनी वसी दुनिया वजूद में आएगी उसमें। अब तो एक ज़मीन है, ये छोटी सी ज़मीन है, ज़र्रे की हैसियत है इसकी, अगर आप बाकी कायनात के मुकाबले में देखें। अब हमें बहुत मालूम हासिल है, हम जानते हैं कि नूरी सालों के फासले हैं, हमें मालूम है कि हमारी कई ज़मीनें बाद ऐसे सैारे और सितारे हैं जिनमें डाल दी जाएँ तो मालूम भी ना हो कि कहाँ गई हैं। ये जो सूरज हमारे ऊपर चमकता है, इससे बड़े बड़े सूरज बाज दूसरी कहकशाओं में मौजूद हैं, ये सब बातें हमें मालूम हो गई हैं। तो दुनिया में हमेशा से इंसान अपने गिर्दोपेश का मुताला करता रहा है, तो उसके दो रवैये रहे हैं। एक रवैया ये है कि वो चीज़ों को जैसे कि वो हैं उस तरह से देखे, उनकी तालील करे, उनकी हिकमत को जानने की कोशिश करे, और दूसरा रवैया ये है कि उनके पीछे वो कुछ मा फौक इदराक चीज़ों का एहसास करें। तो इंसान ने ये किया है, देवी भी बनाए हैं, देवता भी बनाए हैं, उनको तकदीर से खेलते हुए भी दिखाया है, उनकी रज़मगाहें भी आरास्ता की हैं। उनकी बुनियाद पर आप जानती हैं कि ग्रीक मैथोलॉजी वजूद में आई, इजिप्शियंस की मैथोलॉजी वजूद में आई, हिंदुओं ने बहुत से तसव्वुरात पैदा किए, दुनिया के बारे में अंदाजे लगाए, उसकी उम्र मुतय्यन करने की कोशिश की, उसकी बुनियाद पर बहुत से उलूम पैदा हो गए। तो ये एक पूरी तारीख है और उन पुराने उलूम के असरात आज भी मौजूद हैं।
तो क्या हम ये कह सकते हैं इतनी सिविलाइजेशंस गुजरी
जी
हैं, बड़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशंस भी गुजरी हैं इसमें, जो कि आप कहते हैं सच खुदाई को नहीं मानते थे, अपने खुदा अपने माबूद इन सितारों में तलाश करते थे, तो हम क्या कहें कि वो सब भटके हुए थे, हालांकि वो अपने ज़माने के लिहाज से बहुत आगे थे।
इंसान का सफ़र है ना। देखिए बात यह है कि जब इंसान चीज़ों पर गौर करता है तो ये चाहता है कि उनकी कोई लम दरियाफ्त करे। इंसान खामोश नहीं बैठ सकता, यानी वो यूँ नहीं कह सकता कि ये मेज़ है तो बस मेज़ है। वो तो ये जानने की कोशिश करेगा ये कैसे वजूद में आई है, इसकी क्या हकीकत है, इसमें क्या चीज़ लगाई गई है, ये इस तराश खराश के साथ किस तरह वजूद में
ह्यूमन
जानने
ट्रेट
की
है
कोशिश
कि हर चीज़ के बारे
इंसान
में
के अंदर
मालूमात।
एक फितरी तजस्सुस पाया जाता है, वो जानने की कोशिश करता है। तो इंसान का सफ़र अगर आप देखें तो वो इसी तरह गुजरा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम हमेशा उसको आके ये बताते रहे हैं कि ये एक मादी कायनात है, कुछ नहीं है इसमें, ये सारी कायनात खुदा ने तुम्हारे घर के तौर पर बनाई है, ये इसलिए बहुत वसी है और इसी वजह से यहाँ ज़िंदगी नहीं पाई जाती कहीं भी, कि इसको जमा करके तुम्हारे ही लिए एक अबदी घर बनाना है। तुम्हें ज़मीन पर आबाद किया गया ऐसे ही जैसे किसान पनीर लगा देता है, जब तुम कुछ उगजाओगे उसके बाद ये कायनात एक नई कायनात में बदल जाएगी। कुरान मजीद के अल्फाज ये हैं कि यौम तुबद्दल अर्ज़ो गैर अर्ज़ व समावात, हम इन सब आसमानों और ज़मीनों को पकड़ेंगे और पकड़ कर एक नई ज़मीन और नए आसमान में तब्दील कर देंगे। तो
लेकिन
ये
सर,
सब कुछ ऐसे ही है।
लेकिन इसके बावजूद कि अब इतनी एडवांसमेंट हो गई साइंस में टेक्नोलॉजी में सब कुछ होने के बावजूद भी अब भी बहुत सारे लोग यकीन रखते हैं इस चीज़ पर,
ऐसा रहेगा
लेकिन है ना। अब
देखिए
देखें ना दुनिया में,
हाँ।
अब हिंदू तो चले हमने कह दिया कि वो उनके मजहब का हिस्सा है, लेकिन बाकी उसके अलावा भी यानी हम पढ़ते हैं अखबारों में रिसाले में कि इस प्राइम मिनिस्टर ने इस एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया, इस प्रेसिडेंट ने कंसल्ट
अगला
किया
साल
और
इस
वो बड़े
के लिए भारी
प्रेडिक्शंस
होगा।
जी हाँ,
अकल्ट साइंसेस जितनी हैं,
पढ़े लिखे लोग भी यानी इस पे यकीन रखते
जी, अकल्ट साइंसेस जितनी हैं इनसे इंसान अंदाजे लगाता है। देखिए हमारे हाथों की लकीरें, ये लकीरें भी बहुत सी दास्तानें लोग कहते हैं कि कहती हैं, मुझे खुद इनसे बड़ी दिलचस्पी रही एक ज़माने में, हमारे दिमाग की क्या कैफियात है, हमारे दिल की क्या कैफियात है, हमारी ज़िंदगी में क्या अहवाल गुजरेंगे, लोग इनका अंदाज़ा करते हैं। तो एक चीज़ यह है कि कायनात के अंदर क्या कुछ ऐसे आसार मौजूद हैं कि जिससे हम कुछ अंदाज़ा कर सकें क्या होने वाला है, एक ये चीज़ है। आप इन तमाम उलूम को देखें ये इसी नौइयत के हैं, आप इन्हें साइंस के दर्जे में नहीं ला सकते। यानी साइंस के दर्जे में तो कोई इल्म उस वक्त आएगा जबकि आप उसको मामल में लेबॉरेटरी में ले जा कर दिखा सकें कि देखिए हम इसका तजुर्बा कर सकते हैं और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं।
हर बार जब उसको वेरीफाई किया
जब आप हर बार उसको वेरीफाई करें तो एक ही तरह का नतीजा उससे आना चाहिए, ये अकल्ट साइंसेज में नहीं होता। यानी हाथ की लकीरें हैं, इनकी बुनियाद पर आप एक राय कायम करते हैं, एक अंदाज़ा आप इससे कायम कर लेते हैं, वो बसा औकात बिल्कुल दुरुस्त निकलता है।
इल्म नुजूम को इल्म नहीं मानते,
इल्म तो ये है लेकिन इल्म की नौइयत क्या है।
सूडो,
बात
सूडो,
ये है
सूडो इल्म
कि इल्म तो वो आदमी भी रखता है कि जो एक बद्दू है रास्ते में जाता है, और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा अगर आप बद्दुओं की आप कहानियाँ पढ़ें तो वो दूर दराज से आते हुए ऊँट की आपको अकसाम बता देते हैं, अंदाज़ा है ना उनका, तजुर्बा है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बार बार जब इंसान के सामने एक तरीके से आती हैं तो उससे वो नतीजा अक्स कर लेता है। दुनिया के अंदर इल्म तक पहुँचने का एक बहुत बड़ा ज़रिया इस्तिकरा है, इंडक्शन है। यानी आपके पास जो मवाद होता है आप उसको जमा करते हैं और उसकी मुनासबतें तलाश करते हैं और फिर ये कहते हैं इससे ये नतीजा निकलता। हाथ की लकीरों में भी ऐसे ही है, यानी बेशुमार इंसानों की हाथों का लकीरों का जब मुताला किया गया तो मालूम हुआ कि अगर इस तरह के उभार हों, लकीर इस तरफ से जा रही हो, ऐसे उसकी शाखें बन जाएँ, तो आम तौर पर उसके नतीजे में इस तरह की शख्सियत होती है। अब इसको आप इसी दर्जे में रखें, यानी अंदाज़ा लगाने के लिए, मुताला करने के लिए, अगर आप इस दर्जे में इसको रखें तो ठीक है, लेकिन अकीदा बनाएं, ईमान बना ले, आप ये कहें कि ये वो चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पर मुझे अपनी ज़िंदगी के फैसले करने हैं, तो ये अपने आप को अवहाम के सपुर्द करना होगा। तो हमारे मज़हब ने हमको ये तालीम दी है, मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि हमें हकायक पर अपने इल्म की बुनियाद रखनी चाहिए, यानी बाकी चीज़ें ज़ेर मुताला रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की आप नफ़ी कर दें, इल्म है, इल्म के तौर पर जायजा
लीजिए। मजबूरी होती है ना, हर इंसान अपने मुस्तकबिल में झांकना चाहता है, उसके ऊपर हम आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कुरान के हवाले से आपसे कुछ ना पूछना चाहूँगी कि सूरह नहल की 12वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उसने रात और दिन सूरज और चांद को तुम्हारी नफ़ा रसानी में लगा रखा है और सितारे भी उसके हुक्म से नफ़ा रसानी में लगे हुए हैं, तो बेशक इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो समझें। तो नफ़ा रसानी और निशानियों से यहाँ पर फिर क्या मुराद है?
वजह यह है कि हम तो असल में इन्हीं से हरारत हासिल करते हैं। ये सूरज है जो आज अगर ख़त्म हो जाए तो ये पूरी की पूरी दुनिया ही ख़त्म होकर रह जाएगी, यानी हमारी ज़िंदगी की ज़मानत इसी से हासिल होती है। ये हमारी मादी दुनिया के लिए परवरिश का एहतमाम करता है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं।
चांद और सितारे का तो हमें बहुत बेसिक मकसद समझ में आ रहा है, सितारों के लिए हम क्या कहेंगे आप?
सितारों के मामले में भी हम ये जानते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा जो कहकशां हमारे ऊपर लगा हुआ है, इसने हमारे लिए नज़र नवाजी का सामान किया है, हमारे जमालियाती हिस्स की तस्कीन इससे होती है, हमारी दुनिया रातों को इससे रोशन होती है। फिर कुरान मजीद बताता है कि कदीम ज़माने में तो वक्त देखने का ज़रिया यही था, यानी इंसान रातों को सफ़र करते थे और ख़ास तौर पर समंदरों में सफ़र करते हुए तारों के सिवा कोई चीज़ रहनुमाई का ज़रिया नहीं
बनती। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि ये वाली बात ऑब्सोलीट हो चुकी है।
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वक्त के साथ उस तरह नहीं रही।
उसमें एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, इसमें फ़र्क है। वो जो जैसे आप कह रहे इस्तेमाल होता था सितारों का डायरेक्शन के, वो एस्ट्रोनॉमी की बात थी। अब चाँद की जो मूवमेंट है उसे वो हमारे ज़मीन पर टाइड्स की वो है लिंक, कि चाँद के मूवमेंट से उसका भी एक है लिंक, उतार चढ़ाव है टाइड्स का।
जी ऐसे ही बिल्कुल। और बहुत
ये सारे एस्ट्रोनॉमी तो एक साइंस है,
ये साइंस
एस्ट्रोलॉजी को कहते सूडो साइंस है, लेकिन उसके बावजूद इतनी स्टडीज के बावजूद, इतनी रिसर्च के बावजूद भी, यानी बहुत अच्छी खासी तादाद है दुनिया में लोगों की जो इस पे यकीन रखते
हैं।
असल में बात यह है कि आप जब किसी मादी चीज़ का मुताला कर रहे होते हैं तो उसमें कारफर्मा कवानीन का आप मुताला करते हैं या इंसान के साथ उसके ताल्लुक का मुताला करते हैं। कुरान मजीद जब इन चीज़ों का जिक्र करता है तो वो हमें ये बताता है कि तुम इनमें खुदा की निशानियाँ देखो, ये देखो कि ये कायनात कैसे वजूद में आई है, इसके अंदर क्या हिकमत है, क्या मानवीयत है, अल्लाह ताला ने किस तरह एक चीज़ को दूसरे के साथ मिला रखा है, इनमें कैसे चीज़ें जोड़ा जोड़ा बनी हुई हैं, ये किस तरह एक दूसरे की तकमील करती हैं, इससे तुम्हें खुदा की मारिफत हासिल होगी, खुदा की पहचान हासिल होगी। कुरान मजीद में इन चीज़ों का जिक्र इस पहलू से आता है। अच्छा, जब आप इन पर गौर करते हैं, इनको देखते हैं, तो अपनी नफ़ा रसानी की बहुत सी चीज़ें तलाश करते हैं। चांद हमारी दुनिया पर किन पहलुओं से असरअंदाज होता है, अभी इन्होंने समंदरों के मद्देनजर की मिसाल दी। इसी तरीके से सूरज के मामले में तो हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अगर यानी आप ये देखते हैं कि जो मौसम तब्दील होते हैं, तगैरात आते हैं, पौधे निकलते हैं, फसलें लहलाती हैं, खुद हमारे लिए ज़िंदगी का सामान होता है, दुनिया में रोशनी फैलती है, यानी अगर वो गायब हो जाए तो हम दुनिया को रोशन नहीं कर सकते उस तरीके से। और चांद भी इसी तरीके से रातों को हमारे लिए रोशनी का सामान करता है। फिर उससे हम हिसाब किताब जानते हैं, उससे हमारे कैलेंडर पैदा होते हैं, यानी शमसी कैलेंडर है, इसी तरह से वो है। तो रास्ते देखने के लिए भी सितारे काम करते हैं। कुरान मजीद में एक जगह जिक्र है ना कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने गिरदो पेश के लोगों को ये एहसास दिलाना चाहा कि रात बहुत हो गई है, तो नजरा नजरतन फिर नजूम, उन्होंने एक निगाह तारों पर डाली। आज क्या होता है, आज ये होता है कि एक निगाह कलाई की घड़ी पर डाली, उनका 12 बजने वाले हैं, एक बजने वाला है, अब मुझे घर जाना चाहिए। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है हमारे नफ़े के लिए हैं, यानी पूरी इस वक्त जो कायनात, ये कायनात जो हमें नज़र आती है, कुरान कहता है ये एक कायनात है, इसके अलावा 6 और हैं जो हमारे इल्म और इदराक से परे हैं। अभी तो हम इस कायनात को खंगाल रहे हैं, इसका बहुत थोड़ा हिस्सा है जो हमारे इल्म में आया है, अभी बहुत कुछ इसके बारे में अंदाजे लगाए गए हैं। आप अगर साइंस की चीज़ें पढ़ें तो मालूम होता है कि 100 साल पहले जो अंदाजे थे वो बाद में गलत साबित हो गए, उन अंदाज़ों में भी तरमीम करना पड़ी। तो इस वजह से इंसान अपने मुताले को बढ़ाता रहता है। तो एक मुताला है साइंसी तरीके से चीज़ों का करना, और एक ये कि उनके पीछे बाज ऐसी चीज़ों को देखना कि जिनके बारे में हमारे पास कोई ज़रिया इल्म नहीं है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, असरात का बाहमी मुताला करते हैं।
गांधी साहब, आपने बहुत अहम बात की, इस पर मैं भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ाना के हिसाब से अपनी देखते हैं कि क्या असरअंदाज हो रहा है, उनके सितारे उनकी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। दो लोगों की शादी की बात होती है तो कहते हैं जी मिजाज मिलता होना चाहिए, सितारे मैच कराए जाते हैं। यकीनन आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये मैचिंग देखने के चक्कर में रहे होंगे। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इल्मे नजूम। एस्ट्रोलॉजी पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या इन सितारों का हमारी ज़िंदगी पर भी नेगेटिव या पॉजिटिव असर मुरतब हो सकता है, या ये हमारे मिजाज पर भी असर रखते हैं। गांधी साहब, बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि फ़लाना अगर एक्वेरियन है तो बहुत फ्रेंडली होगा, या लियो है तो वो हावी होने वाली पर्सनालिटी होगी, और देखने में भी आता है कि बहुत हद तक हकीकत है। आपका क्या कहना है इस बारे में?
देखिए, हमारे पास जो उलूम है आमतौर पर तीन ज़राए से हम उनको अप्रोच करते हैं। एक तरीका ये है कि आप तजर्बे और मुशाहदे की बुनियाद पर कुछ चीज़ें अक्स करते हैं, उनके कवानीन दरियाफ्त करते हैं, उनको आप लेबॉरेटरी में तजर्बे से गुजारते हैं, उनकी वेरीफिकेशन मुमकिन होती है, इनको साइंस कहते हैं। यानी जब कोई इल्म इस दर्जे में चला जाता है तो फिर वो कम बेशक हकीकत होता है, यानी उसके बारे में हम दूसरों को तालीम दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, और उस पर एतमाद भी कर सकते हैं। आप जब आसमान की तरफ देखते हैं तो इस इल्म के नतीजे में आज आपको ये मालूम होता है कि 1000 साल के बाद भी चांद ग्रहण सूरज ग्रहण किस वक्त पे होंगे, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौसमों में किस नौयत के तगैरात आएंगे, आप ये देखिए कि अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप मौसमों की पेशिनगोई कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात की पेशिनगोई कई महीने पहले की जा सकती है। इसकी बुनियाद पर आप अपने मुकदमात तय कर सकते हैं, जाने आने के औकात तय कर सकते हैं, अपने सफ़र की प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत सी कौमी मनसूबाबंदी कर सकते हैं। तो ये इल्म हुआ ना, यानी इस इल्म ने इंसान को ये फ़ायदा दिया। एक दूसरा तरीका ये है कि आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आ गया, अल्लाह ताला का कोई पैगाम आया और उसमें आपको कोई मालूमात दे दी गई, जैसे हमारे पास कुरान मजीद है, जिस तरह इससे पहले बाइबल में मजमूए सहाइफ है जिसमें तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, वहाँ कोई मालूमात दे दी गई। उसमें चूंकि अल्लाह के पैगंबर की तरफ से वो बात कही जाती है, अल्लाह ताला वो बात नाजिल करते हैं, तो वो भी एक हकीकत होती है। पैगंबर की पैगंबरी के बारे में हम अकली दलाइल से मुतमिन हो जाते हैं तो उसकी दी हुई इत्तला को भी मानते हैं। ये दूसरा ज़रिया इल्म है, और ये ज़रिया इल्म भी मौजूद है, जिस तरह के मैंने भी अभी इसका हवाला दिया। एक तीसरी चीज़ ये है कि जिसमें हम मुनासबतों से नताइज अख्ज़ करते हैं, यानी मुनासबतों से नताइज अख्ज़ करने का जो अमल है ये बुनियादी तौर पर क्याफ़ा है, अंदाज़ा है। ये अंदाजे के दायरे में रहे तो बड़ी दिलचस्पी होती है इसमें। जिस तरह कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर आप क्याफ़ा लगाएं कि इस नौइयत की 15 लकीरें अगर होंगी तो आदमी की शख्सियत ये होती है, मुताला किया ना आपने, तो इसका मतलब ये है कि है कुछ असर इसका, यानी असर किस पहलू से है, शख्सियत के मुताले में। इसी नौइयत के असरात पैदाइश की अगर मुनासबतें आप तय कर लें, यानी लोग अप्रैल में पैदा हुए या लोग मार्च में पैदा हुए या पहले हफ्ते में हुए या दूसरे हफ्ते में हुए, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में ये मुनासबतें रखी हैं। अगर आप गौर करें तो मखलूकात के अंदर भी ये मुनासबतें मौजूद हैं, यानी एक मखलूक को आप दूसरी मखलूक से मिला के देखें तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलती जुलती नज़र आएंगी। हत्ता कि आप पहाड़ों को कुछ देर देखते रहें तो आपको उनकी धारियाँ भी मिलती जुलती महसूस होती हैं बाज़ औक़ात। तो ये जो मुनासबतें हैं इनका इंसान मुताला करता है और इससे कुछ नतायज निकाल लेता है। ये नतायज ना साइंस होते हैं, ना इल्म होते हैं, ना इनमें हतमियत होती है। ये नतायज बुनियादी तौर पर क्याफे या अंदाजे पर मबनी होते हैं,
और इनका सितारों से लेना देना कुछ नहीं है। एक ग्रुप को हम कह दें
कुछ साथ भी नहीं है, यानी कोई सितारा आपकी तकदीर पर असरअंदाज नहीं हो रहा, कोई आपकी बिगड़ी नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इंसान ने इस तरह के कई अंदाजे लगाए। मैं समंदरों के किनारे रहने वाले जब लहरें उठती हैं तो लहरों के उठने के अंदाज़ से बाज़ नतीजे निकालते थे। अच्छा, वो 10-15 चीज़ें जब एक ही मरतबा उस तरह वाकई हो जाती हैं तो इंसान उससे एक अंदाज़ा लगा लेता है। तो अंदाजे और क्याफे का इल्म है ये, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं।
पैटर्न होता है जिसको अगर वो रहता है,
और बड़ी हद तक होता है वो
ऑब्जर्वेशन,
यानी चूंकि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई इस तरीके से है कि इसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिला दिया है। देखिए, खुद वो कहते हैं कि मैंने फलों में, मैंने दरख्तों में, मैंने पत्तों में, मैंने हवाओं में, मैंने सहराओं में मुनासबतें रखी हैं, मिन शक्ल ही अजवाज, मिलती जुलती चीज़ें बनाई गई हैं। मिलती जुलती चीज़ों का आप मुताला करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उससे नतीजा निकाल लेते हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात आप चीज़ों को बार बार एक तरीके से आता देखते हैं तो इससे आपका एक इल्म बनना शुरू हो जाता है। मैंने बद्दुओं की मिसाल दी थी कि वो बाज़ औक़ात कई मील के फासले पर आते हुए जानवर के बारे में आपको बता देते हैं कि वो ऊँट है या ऊँटनी है, हामिला है या हामिला नहीं है, कितने माह बाद जन्ने वाली है, उसकी लगाम किसके हाथ में है, चलने का अंदाज़ क्या है, बता देंगे आपको
जी,
आपको हैरान कर देंगे बाज़ औक़ात। अब क्या चीज़ है ये? ये कोई इल्हामी इल्म नहीं है, बल्कि ये बरसों के मुशाहदे और मुताले का नतीजा है। अच्छा, जब आपके यहाँ कम चीज़ें हों, इस वक्त हमारी दुनिया का क्या हाल है, हमारी दुनिया में अब हज़ारों की तादाद में रोज़ नई चीज़ें पैदा हो रही हैं। आप देखिए, इस वक्त आप इंटरनेट के सामने बैठ जाए अगर, तो ऐसा लगता है कि इल्म का एक दरिया है जो बहता चला जा रहा है। इसमें इंसान की कॉन्सेंट्रेशन और इर्तकाज़ तवज्जो कम हुआ है। पहले क्या है, एक बद्दू है, उसकी सारी ज़िंदगी का हासिल क्या है, एक ऊँटनी, उसी को देखना, एक पहाड़, एक सहरा, सफ़र करने का तरीका। तो वो जो अब हमारी तवज्जो सारी दुनिया की चीज़ों में बिखर के रह जाती है, वो पूरे इर्तकाज से उसका मुताला कर रहा है। जब वो उसका मुताला करता है तो बाज़ औक़ात वो इतना गहरा मुताला हो जाता है कि एक ऊँटनी के पाँव रखने के अंदाज़ को देख देख कर वो हज़ारों ऊँटनियों के बारे में एक राय कायम कर लेता है। तो ये भी एक इल्मी चीज़ है, बशर्ते कि ये अपने हदूद में रहे। यानी अगर ये इससे आगे बढ़ के ये तस्वुर कायम कर लिया जाए कि सितारे हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ कर दिया था, वो तो खुद फराकी अफलाक में खारो ज़ुबू है, उनको ये मालूम नहीं है कि गर्दश कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ ख़त्म करनी है। एक कायदा है जिसके पाबंद है, कुरान मजीद उसकी तस्वीर खींचता है कि मजाल नहीं है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, मजाल नहीं है कि कोई अपने मदार से इधर उधर हो जाए, जो गर्दश का दायरा मुकर्रर है उसके अंदर गर्दश कर रहे हैं, जो खुद गर्दश में है वो हमारी गर्दशों पर क्या असर अंदाज होंगे। ये सिर्फ मुनासबतें हैं जिनका मुताला किया जाता है और ये मुतासर।
आपने कहा कि कोई प्रॉपर साइंस नहीं है और चूंकि इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं प्रूव किया जा सकता, इसलिए इसे बाकायदा इल्म करार देना दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग उस पर एतबार करते हैं, इसके लिए उसको फॉलो करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें गैर साइंसी तर्ज फिक्र की जानब ले जा रहा है कि गैर इस्लामी भी है और साथ में हमें عملی کی راہ بھی دکھا رہا ہے.
اس میں دو چیزوں کو ہم الگ کر لیں. دیکھیے ایک چیز ہے کسی چیز کا غیر سائنسی ہونا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی سائنسی پر بسر کرتے ہیں. یعنی ہم بہت سی غیر سائنسی چیزوں کے ساتھ بھی مناسبت پیدا کی ہوتی ہے. ہمارے احوال، تجربات، ملنا ملانا، اپنی معاشرت کے بارے میں ہماری آراء، ہمارا ایک دوسرے کے بارے میں بہت سی آراء قائم کرنا، یہ کوئی سائنسی طرز فکر پر مبنی نہیں ہوتا. اگر ساری دنیا کو آپ صرف سائنسی طرز فکر کے اندر بند کر دیں تو دنیا میں کوئی رونق اور رنگینی باقی رہ نہیں جائے.
بہت بورنگ ہو جائے گی
دنیا کے اندر کوئی رونق نہیں آ جائے باقی. تو اس لیے اس کو بھی گوارا کرنا چاہیے. اسلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ دیکھیے کوئی چیز بھی انسان کے اوپر اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی. یعنی یہ بات کہ کوئی کسی کی بگڑی بنا دے گا، کوئی کسی کو اولاد دے دے گا، کسی کے اوپر کوئی اللہ کی خاص رحمت اس خاص حوالے سے ہو جائے گی، اس کے اپنے قانون اور قاعدے ہیں. تو یہ چیز اگر آپ مانیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ بہم پرست ہو جائیں گے. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے اور وہم پرست نہ رہے. وہم پرستی ایک بالکل الگ چیز ہے. اس کی وجہ یہ کہ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے. میں نے بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھا ہے، پڑھے لکھے، آکسفورڈ کے، کیمبرج کے پڑھے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی پیر صاحب کے ساتھ جا کے بعد کوئی چھڑی لگوا کے آ جاتے ہیں اور اس کو اپنی بڑی سعادت سمجھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. ہمیں جو چیز مذہب نے تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم میں فرق کرنا سیکھیں. خدا کی طرف سے آنے والا علم ایک قطعی علم ہوتا ہے. سائنسی تحقیق سے، تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہونے والا علم قابل اعتماد علم ہوتا ہے، قابل اطمینان علم ہوتا ہے. یہ اندازوں کا علم ہے اور اس کو اسی طرح انجوائے کرنا چاہیے جس طرح ہم ادب کو انجوائے کرتے ہیں.
کہہ سکتے ہیں کہ اندازوں کے علم کے مطابق غامدی صاحب اور اقبال صاحب کی آپس میں نہیں بنتی،
آپس میں نہیں
چلتی ہے.
دیکھیے اس طرح کی بہت سی مناسبتیں جو ہم تلاش کر لیتے ہیں. ہم ادب پڑھتے ہیں، اچھا شعر پڑھتے ہیں، اس میں بعض اوقات غیر معمولی مبالغہ ہوتا ہے، انجوائے کرتے ہیں نا اس کو.
جی
اگر اس کو اٹھا کر ہم ایک حقیقت بنا دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ایک غلط میدان میں آ گئے ہیں. تو یہ جتنی چیزیں علم نجوم ہو یا پامسٹری ہو یا اور اس نوعیت کی بے شمار چیزیں ہیں.
صاحب نے نوسٹراڈمس کا تو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا،
جو پریڈکشنز ہیں اس کی پیشین گوئیوں کی ایک دنیا قائل ہے.
جی
اور بہت سی پیشین گوئیاں اس نے اپنے بارے میں کی، اپنی موت کے بارے میں کی اور دوسری چیزوں کے بارے میں کی.
بہت ساری
پیشین گوئیاں جو آپ اگر پرانی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر بادشاہ کے دربار میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے، پیشین گوئیاں کرتے تھے اور وہ پیشین گوئیاں بالعموم ٹھیک ثابت ہو جاتی تھیں. اس کے ٹھیک ثابت ہونے کی وجہ وہی مناسبتوں کا مطالعہ ہے. دیکھیے مناسبتوں کے مطالعے سے بعض اوقات میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ خود خدا نے یہ چیز رکھی. اس میں کچھ اور علوم بھی کار فرما ہوتے ہیں. یہ بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو بہت سے انسانوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی طرح پیدا کیے گئے ہیں. ایک شخص ذہنی لحاظ سے عبقری ہوتا ہے، آپ جینیس کہتے ہیں. یعنی دنیا میں بے شمار اساتذہ ہیں جو آپ کو سائنس پڑھا رہے ہیں. میں نے بھی بعض اساتذہ سائنس پڑھی، بڑے اچھے استاد تھے. آئنسٹائن تو نہیں تھے نا، نیوٹن تو نہیں تھے، ارسطو نے 1000 سال تک سائنس کا جو تصور قائم کیا تھا اور دنیا کو جو تصورات دیے تھے ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اتنا بڑا آدمی تھا وہ. یہاں تک کہ نیوٹن نے آ کے اس سارے قصر کو توڑ دیا اور ایک نئی دنیا بنائی، اور اس کے بعد آئنسٹائن نے ایک اور دنیا بنا دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کے مابین اللہ تعالیٰ بعض اوقات بڑی غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ پیدا کر دیتا ہے ذہنی لحاظ سے. ہم کہتے ہیں یہ جینیس آدمی ہے، عبقری آدمی ہے. بعض اوقات ہمیں لفظ نہیں ملتا کہ ہم کسی ذہانت کی تعبیر کر سکیں. الفاظ وہی ہوتے ہیں، میرے پاس بھی وہی ہیں، لغت میں لکھے ہوئے ہیں. ہم اگر چاہیں تو کوئی ڈکشنری کھول کے وہ سارے الفاظ لے لیں، لیکن اس سے غالب کا شعر وجود میں نہیں آ جاتا. یعنی غالب کا حسن کلام، اس کا الفاظ کا انتخاب، وہ جس طرح کے معنی پیدا کر دیتا ہے، جس طرح کی الفاظ کی جادوگری دکھاتا ہے، وہی غیر معمولی چیز ہے. آپ فردوسی کا شاہنامہ پڑھیے، یعنی ایک شخص ایران کی تاریخ کو نظم کر رہا ہے اور ایک حیرت انگیز دنیا وجود میں لے آتا ہے، برسوں تک انسانوں کو متاثر کرتا ہے. مغربی ادب میں آپ دیکھیے ورجل کا کیا مقام ہے، ہومر کا کیا مقام ہے. ہمارے ہاں شیکسپیئر نے، اقبال نے اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا. تو اس طریقے سے اس نے اپنے ڈراموں میں زندگی کے حقائق کی کیسی تصویر کشی کی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انسانی نفسیات کے اندر اتر کر ایک شخص ہمارے سامنے اس کی تصویر کشی کر رہا ہے. یہ عبقری ہیں ذہنی لحاظ سے. بعض لوگ جسمانی لحاظ سے بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں، یعنی میری آپ کی طرح نہیں، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ترشا ہوا جسم ہے. میں نے ایک مرتبہ محمد علی قلعے کو بہت قریب سے دیکھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پتھر سے ایک شخص کو تراش دیا گیا ہے. تو جسمانی لحاظ سے بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ان کے اندر، ایسے ہی بعض لوگوں کے اندر نفسی صلاحیتیں ہوتی ہیں. وہ اتنی غیر معمولی ہوتے ہیں کہ دیوار کے پار دیکھ لیں گے، برسوں بعد کی چیزوں کے بارے میں ان کو ایک نوعیت کا الہام سا ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آئنسٹائن ہے. یعنی اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، اس چیز سے نہیں ہے. اب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پھر کسی علم کو بھی سیکھ لیتے ہیں. علوم کئی قسم کے ہیں، وہ علوم بھی ہیں جن کا تعلق نفسی علوم سے ہے. ان کے ذریعے سے بعض اوقات مستقبل کے بارے میں ہم صحیح اندازے لگا لیتے ہیں. بعض اوقات اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا مناسبتوں سے اندازے لگا لے. اب اگر بنیادی صلاحیت موجود ہے مستقبل میں دیکھنے کی, ان علوم کی سپورٹ بھی حاصل ہو گئی ہے, تو آدمی 100-200 سال بعد کی پیشین گوئی کرتے ہیں.
یعنی کہ لوگ کہا جا سکتا ہے کہ گفٹڈ ہیں, ایکسیپشنز کے زمرے میں.
بالکل ایسے ہی, اصل میں ہم ذہنی لحاظ سے برتر لوگوں کو روز دیکھتے ہیں, جسمانی لحاظ سے غیر معمولی لوگ بھی عام مشاہدے میں آتے ہیں. نفسی لحاظ سے جو لوگ غیر معمولی ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ہمارے مشاہدے میں نہیں آتے, اور یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ راہبوں میں دیکھیں گی, جن کو آپ جوگیوں میں دیکھیں گی, جن کو آپ لاماؤں میں دیکھیں گی, جن کو آپ ہمارے یہاں کے صوفیوں میں دیکھیں گے.
بہت خوب,
بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے.
صحیح بات کر رہے ہیں بالکل آپ. اقامتی صاحب, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ علم نجوم سیکھنا درست, آپ نے بھی کہا باقاعدہ سائنس تو نہیں ہے لیکن اس کو انجوائے کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن بعض اوقات کہتے ہیں کہ شرک پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, آپ کہیں جائیے گا نہیں, بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک. علم نجوم کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں, ایک مرتبہ پھر بڑھتے ہیں غامدی صاحب کی جانب. غامدی صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ کیا علم نجوم سیکھنا شرک ہے.
یہی بات یہ ہے کہ علم نجوم میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو مشرکانہ ہوں, بالکل ایسے ہی جس طریقے سے میں ادب میں شاعری میں بھی ایسی چیزیں آپ کو دکھا سکتا ہوں, لیکن اس سے اصل علم کی نفی نہیں ہوتی. یعنی کسی علم کو اگر آپ علم کے دائرے میں رکھیں, جو بات آپ کہیں پوری احتیاط کے ساتھ کہیں, اپنے آپ کو خدا کی جگہ نہ رکھ لیں, تو پھر آپ ہر علم سے استفادہ کر سکتے ہیں.
لیکن سب آپ, جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے گفٹڈ ہوتے, جیسے ندا نے کہا, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا, یہ دی بھی ان میں یہ خاص بات یا یہ کوالٹی یا آپ جو بھی کہہ لیں, یہ سکل یا آئی سائڈ یا فور سائڈ یا جو کہہ لیں, یہ اللہ تعالیٰ نے دیے. کہ جیسے نوسٹرڈمس تھے, ایسے بہت سارے لوگ ہیں, جیسے آپ نے کہا صوفی ہے, پیر ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا. اگر یہ چیز اگر وہ بیان کرتے تو باقی ہمارے علماء اکرام کہتے کہ یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ شرک ہے, اب وہ فوراً ان پہ ایک فتویٰ ایشو ہو جاتا ہے. لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے نا,
بیان کرنے والوں کو اپنی حیثیت متعین کر کے بتا دینی چاہیے, وہ خدا نہیں ہے, خدائی میں شریک بھی نہیں ہے.
نہیں, لیکن کوئی کلیم بھی نہیں کرتا کہ میں
یہ آپ سے عرض کروں کہ اصل میں یہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے ان کو, انہیں بتانا چاہیے کہ یہ بالکل اسی طرح کا ایک علم ہے, ہم اندازہ لگا رہے ہیں, اندازہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا, اس خواب میں اس نے 7 گائیں دیکھیں, کچھ دبلی تھیں, کچھ پتلی تھیں, اسی طرح 7 بالیاں دیکھیں, اور اس طریقے سے اگلے 7 سال میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کی ایک تصویر سامنے آئی. یہ خواب ہے نا, یعنی اس کے ذریعے سے گویا ایک علم دیا گیا. سوال یہ ہے کہ وہ علم جو خواب کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے, اسی نوعیت کا کوئی علم انسان بعض اوقات پیدائش سے بھی لے کے آ جاتا ہے. یعنی اس کے ہاں اس کی جو اندرونی شخصیت ہے وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. آپ علم کو علم کے طریقے پر پیش کرتے ہیں, کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. دیکھیے سائنس کیا کرتی ہے, سائنس آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ وہ کرشمہ دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے, یہ ان اصولوں کے مطابق دکھا رہے ہیں, تو اس سے کوئی شرک پیدا ہوتا ہے, اس سے کوئی حرمت واقع نہیں ہوتی. خرابی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو پریزنٹ کرتے وقت خدائی کا دعویٰ کر ڈالتے ہیں. تو اگر اس علم کے ماہرین اس کا لحاظ
کریں, دعویٰ سے مطلب ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے, اس کو تو ہم الگ رکھ دیں, میرا نہیں خیال کوئی یہ کرتا ہے, لیکن کوئی بات آپ کیا یہ بھی خدائی میں یا شرک میں شامل ہوگا کہ 100% اشورٹی کے ساتھ یہ کہے کہ ایسا ہو کر رہے گا.
یہی بات یہ کہ اگر آپ کا علم مبنی ہے اندازے پر تو پھر آپ کو اندازے ہی کو بیان کرنا چاہیے, اگر آپ کا علم مبنی ہے سائنٹیفک حقائق پر تو آپ کو اس طریقے سے اس کو بیان کرنا چاہیے. تو اگر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ 100% نتیجہ بیان کر رہے ہیں اس کے دلائل یہ ہیں, یہ اس علم کی روشنی میں عکس کیا گیا ہے, اس کو عکس کرنے کے لیے یہ سائنٹیفک طریقہ اختیار کیا گیا, تو کہیے. اگر سائنس بھی کہتی ہے نا,
شخص گفٹڈ ہے اور اسے کوئی ویژن آتا ہے اور اس کے ماضی کی تمام جو پریڈکشن ہیں درست ثابت ہوئی ہیں, تو وہ یقیناً اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب جو مجھے ویژن آیا
اس کو وہ مذہبی چیز نہ بنائے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اس سے پہلے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ آئنسٹائن کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مذہبی آدمی تھا یا مذہبی آدمی نہیں تھا, ایک علم کا ماہر تھا. تو علم کے ماہر کو اپنے آپ کو علم کے ماہر کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے, اور اپنے علم کو بتانا چاہیے کہ اس علم کی بنیادیں کیا ہیں, اس میں نتائج کیسے عکس کیے جاتے ہیں. پھر یہ ایسے ہی جیسے سائنسی چیز ہے, مجھے یہ بتائیے کہ اب ہماری سائنس یہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ فلاں جو سیارہ ہے یہ گردش کرتا ہوا 100 سال کے بعد اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ سے یہاں سے گزرے گا, یہ پیشین گوئی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ پیشین گوئی کس بنیاد پر کی گئی ہے؟ یہ فلکیات کا مطالعہ کر کے کی گئی ہے. اسی نوعیت کی پیشین گوئی انسانوں کے ساتھ پیش آنے والے معاملات میں بھی کی جا سکتی ہے. اور جس طرح انہوں نے حوالہ دیا, یعنی نوسٹراڈیمس کی بہت سی پیشین گوئیاں ہیں جو ہم پڑھتے رہے ہیں, جن کا تاریخ میں احوال موجود ہے, اس زمانے کے بارے میں بھی اس نے بعض پیشین گوئیاں کی تھیں, उनमें से बाज़ दुरुस्त साबित हुए, बाज़ बिल्कुल गलत साबित हुए। यानी ये जो सदी गुजरी है इसके बारे में उसकी अच्छा उसकी पेशिनगोइयों का अंदाज़ क्या होता है, वही जो पुराने काहिनों का अंदाज़ होता है, यानी ज़ुबानी अल्फाज बोले जाते हैं। ऐसे है कि जैसे आदमी शायरी कर रहा है, उससे मैंने एक नतीजा निकाल लिया, आपने एक नतीजा निकाल लिया। तो बात असल में ये है कि मेरे इल्म की जो बुनियाद है मुझे उसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर मैं उससे आगे बढ़ के कोई दावा कर देता हूँ तो ये वो चीज़ है कि जिसको फिर मजहबी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से हम नापसंद करते हैं, हम कहते हैं कि ये आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन साइंस को आप देखिए, साइंस पेशींदगोई करती है, मौसमों की पेशींदगोई आप रोज़ कर रहे हैं
जी, बिल्कुल
अपने मुताले की बुनियाद पर कर रहे हैं। तो अगर मौसम की पेशींदगोई अपने मुताले की बुनियाद पर करना जायज़ है, तो इंसानों के अहवाल की कोई पेशींदगोई अपने मुताले की बुनियाद पर, जिसकी इल्मी बुनियादें आप वाजे कर सकें, वो करना नाजायज़ कैसे हो सकता है?
अब जैसे हम बच्चों के बारे में कहते हैं बड़ा के बहुत उस्ताद होगा, ये
बाज़ औक़ात आप किसी आदमी की तहरीर देखते हैं, तहरीर का अंदाज आपको बता देते हैं इसकी शख्सियत क्या है।
सही, आपका कहना है कि एक ऑब्जर्वेशन हो या पैटर्न हो, उसको ऑब्जर्व करके तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नजूमी करते हैं बाज़ औक़ात लोगों के साथ के फलाना सितारा या सयारा जब इस खाने में दाखिल होगा, मसलन जहल दाखिल होगा, तो आप पर नहुसत का टाइम है या कारोबार खराब हो सकता है या अच्छा टाइम है, शादी के लिए अच्छा टाइम है, ये इल्म में
देखिए ये उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया ये है कि इस कायनात के अंदर जो साइकिल चल रहा है अहवाल का, हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी तारीख के अहवाल भी बाज़ औक़ात बार बार उसी तरीके से नमूदार होते हैं। हमारे मुल्क की तारीख उसकी बेहतरीन मिसाल है, यानी उस तारीख में आप देखते हैं हर 10 साल के बाद बिल्कुल एक ही तरह के अहवाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें तो फिर वही तस्वीर नज़र आ रही है जो मुझे 10 साल पहले की तस्वीर याद दिलाती है।
तो
ये पेपर वाला काम हुआ है तो
अच्छा, अब आपने जब इसका मुताला किया तो मुताला करने के बाद वक़्त आपको महसूस होता है कि ये वही इंसान है, इनकी तालीम में कोई तब्दीली नहीं आई, इनके अंदर कोई बड़ा तगैर वाक़ नहीं हुआ, ये उसी तरह बिहेव करेंगे जिस तरह पहले कर रहे हैं, तो आप पेशींदगोई भी कर देते हैं। इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। ये इन चीज़ों से रोका क्यों गया? इन चीज़ों से जब रोका गया तो उसकी वजह यह थी कि ये लोग जो उस ज़माने के नजूमी और काहिन थे, ये अपने आप को कोई खुदा के साथ मुतल्लक करार दे देते थे। इनका ख्याल होता था कि इनके पास भी उसी तरह से कोई इल्हाम आ गया जिस तरह से अंबिया अलैहिस्सलाम को इल्हाम होता है। तो ये चूंकि एक बिल्कुल झूठी बात थी, इसकी कोई हकीकत नहीं थी, इस वजह से इससे रोका भी जाएगा। जब आप इल्म को इल्म के तरीके पर पेश करते हैं और अपने इल्म के हुदूद और लिमिट्स का लिहाज करके पेश करते हैं, तो उस पर कोई एतराज़ नहीं किया।
सर, पीर औलिया जो थे हमारे, अब ये तो इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत है, तो ये तो कभी उन्होंने क्लेम नहीं किया कि हम उसी हस्ती पे,
उनकी जिंदगी तो बहुत ही लो।
देखिए मैं यहाँ एक छोटी सी बात अर्ज करूँ, बहुत से लोग हैं इस वक्त, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, हमारे यहाँ वो बाज़ औक़ात इस नौयत की पेशींदगोइयाँ करते हैं, वो आपको आपके बाद अहवाल भी बता देते हैं, कहा जाता है इनमें बड़ी रूहानी बसीरत है इस तरह के लोगों में। अब ये बुनियादी तौर पर दो चीज़ों की वजह से होता है, वही मैंने जो आपको बताया कि नफसी लिहाज से बाज़ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो चीज़ों को इस तरह महसूस कर लेते हैं, कुछ उलूम के माहिरीन होते हैं, लेकिन वो तासुर ये देते हैं कि जैसे रूहानियत में बहुत आला दर्जे पर पहुँचे हुए हैं। क्यों, क्या वजह है इसकी? यानी मैं एक साइंसदान हूँ, साइंसदान की हैसियत से मैंने आपके सामने अपने इल्म के नताइज रख के बात ख़त्म हो गई। इन सारे उलूम का ताल्लुक ना मज़हब से है, ना इस्लाम से है, ना हिंदू मत से है, ना बुद्ध मत से, किसी चीज़ से भी नहीं। ये बुनियादी तौर पर एक सेकुलर चीज़ है,
बिल्कुल।
तो आप उसको उस तरीके से पेश करें, चुनाचे मैं बहुत से लोगों के कालम पढ़ता हूँ, बाज़ औक़ात वो लिख रहे होते हैं कि ये रूहानी बुज़ुर्ग जो हैं ये दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं और इनको बड़ी बसीरत हासिल होती है और ये तो आपके हवाले दिल बता देते हैं, ये सब कर देते हैं, इससे एक मज़हबी तासुर पैदा किया जाता है, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक ही नहीं।
अब जैसे
आप उसको इल्म के तौर पर पेश करें और उसका माहिर एक हिंदू हो सकता है, एक बुद्ध हो सकता है, उसका माहिर एक मसीही हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिस तरह साइंस का माहिर आइंस्टाइन भी हो सकता है, न्यूटन भी हो सकता है, आप उसके मजहब की तहकीक नहीं करते, और मुसलमानों का कोई साइंसदान भी हो सकता है।
अब आप
तो खराबी असल में यहाँ है कि हम इसमें विलायत ढूंढते हैं, हम इसमें खुदा के साथ खुदा रसीदगी ढूंढते हैं, जबकि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं।
और इसमें जैसे आपने कहा कि वो नफ्स की बात है कि भाई अगर वो प्लेइंग विथ योर साइकोलॉजिकल साइकी, और ये एक बहुत मशहूर किस्सा है राज कपूर का, जो मशहूर इंडियन फिल्म के एक्टर थे, कि उनके वालिद पृथ्वीराज कपूर, ये तो पठान थे सारे, तो वो एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया उन्होंने कि भाई ये बेटों की तकदीर के बारे में बताओ, तो कहा कि राज कपूर आपका सबसे बड़ा निकम्मा बेटा होगा, सारे बेटे तरक्की कर पाएंगे, ये निकम्मा होगा, ये इसकी लकीरों में लिखा है, ये इसके सितारों में लिखा है।
और
वो शख्स ने कहा कि मैं ये तकदीर, मेरे हाथ की लकीर बदल दूंगा, मैं सितारों का जो लिखा है बदल दूंगा, और मैं सबसे ज़्यादा कामयाब होना इस फैमिली में कपूर, और उसने करके दिखाया।
ऐसा ही होता है, देखिए इससे ये बिल्कुल मालूम
और ये हकीकत है, ये फैक्ट
बिल्कुल, और बहुत सी मिसालें इसकी हैं। यानी एक शख्स के बारे में एक पेशींदगोई की गई और किसी इल्म की बुनियाद पर की गई, اور اس علم کے دلائل بھی دیے گئے لیکن بالکل غلط ثابت ہوئی۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان کے انتخابات سے پہلے بعض پیشین گوئیاں کی گئیں، وہ پیشین گوئیاں غلط نکلیں۔
میچ کے سے پہلے بہت سارے علم نجوم والے اور
بہت سی غلط نکلیں۔ اسی طریقے سے پاکستان ہاکی کھیل رہا تھا، اس کے بارے میں پیشین گوئیاں کی گئیں، ان میں سے بہت سی پیشین گوئیاں غلط لیکن درست بھی نکلتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کیافے کے علم کو اس کی جگہ پہ رکھیے۔ آپ کو اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے، آپ اس میں کوئی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں، صلاحیت کے طور پر اس کو پیش کیجیے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں پر یہ تاثر نہ بٹھائیے کہ آسمان کی خبریں آپ کو ملتی ہیں اور آپ ولی اللہ ہو گئے ہیں اور آپ سینٹ ہیں۔ اصل میں یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ علم کو علم کی جگہ رکھیں، یعنی خدا رسیدگی کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کی سیرت کیسی ہے، آپ خدا سے کتنا تعلق رکھتے ہیں، آپ انسانوں کی کتنی ہمدردی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ چیزیں وزن رکھتی ہیں۔
بے شک بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کا، آپ نے بہت ساری وضاحتیں اس موضوع کے حوالے سے جو ہمارے ذہنوں میں سوال تھے وہ آپ نے پیش کی۔ اقبال صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور یقیناً آپ کے اس موضوع کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوں گے جن کے جوابات آپ نے آج کے پروگرام سے حاصل کر لیے۔ ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ اور ہمارا فیس بک اکاؤنٹ، ہمارا ای میل ایڈریس بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کوئی ایشو سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے سوال ہیں، پروگرام کے بارے میں آپ کی رائے ہے، تو ہمیں ضرور اس سے آگاہ کیجیے۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ غامدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔